بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گنراج ایران کی آواز۔
ریڈیو تہران کے سمانیہ شروتاگرن، زہرہ زیدی اور ساتھیوں کا سلام سویکار کریں۔ کارکرم کا آرمب ہم سورہ حجرات کی 10ویں اور 11ویں آیتوں کی تلاوت اور انواد سے کر رہے ہیں، اور تلاوت کر رہے ہیں شری عبد الباسط۔
بسم الله الرحمن الرحيم
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو اپنے دو بھائیوں میں میل جول کرا دیا کرو، اور ایشور سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر دیا کی جائے۔ ہے ایمان والو، تم میں سے کوئی گٹ دوسرے گٹ کی ہنسی نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے اچھے ہوں۔ اور نہ استریاں دوسری استریوں کی ہنسی اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور آپس میں نہ ایک دوسرے پر ویانگ کرو، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے پشچات اوگیا کا نام ہی برا ہے، اور جو لوگ اس بات سے پشچاتاپ نہ کریں وہی اتیاچاری ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ دوستو، ہمارا یہ پرسارن آپ شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ برابر 11,860 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ آج منگلوار ہے، خرداد کی 10، شوال کی 29 اور مئی کی 31 تاریخ۔ اس سبھا میں پرسارت ہونے والے کاریکرم اس پرکار ہیں۔ سب سے پہلے آپ سنیں گے وشو سماچار، اس کے بعد ہم پرستت کریں گے راجنیتک چرچا، اس کے بعد آپ کو سنوائیں گے قرآنی قصے، اور انتیم کاریکرم ہوگا فلسطینی مدعا اور سمادھان۔ تو دوستو، تازہ اور وستت خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ دیکھتے رہیے۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے parstoday.com/hi۔ اب آپ سید میسم سے وشو سماچار سنیے۔ سب سے پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ تاجکستان کے راشٹرپتی امام علی رحمان نے ایران کی اسلامی کرانتی کے ورشٹھ نیتا سے ملاقات کی ہے۔ تہران کا کہنا ہے کہ شہید خدائی کے ہتھیاروں کو جلدی دردناک سندیش پراپت ہونے والا ہے۔ آئی آئی اے نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس 3,800 کلو گرام سے زیادہ سمرتھت یورینیم ہے۔ کشمیر میں مہیلا شکشیکا کی ہتیا پر فاروق عبداللہ نے کڑی پرتکریا دی ہے۔ اب آپ وستار سے وشو سماچار سنیے۔ ایران کے دورے پر آئے تاجکستان کے راشٹرپتی امام علی رحمان نے اپنے شش منڈل کے ساتھ اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی سے ملاقات کی ہے۔ پراپت رپورٹ کے مطابق سوموار کی شام کو تاجکستان کے راشٹرپتی امام علی رحمان نے اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے بل دیا کہ دونوں دیشوں کے بیچ انیک میدانوں میں سہیوگ بڑھانے کی کشمتا موجود ہے، اور ایران کی پڑوسی دیشوں کے ساتھ سمبند مضبوط کرنے کی نیتی کے مد نظر دونوں دیشوں کے سمبندوں میں بنیادی بدلاؤ آنا چاہیے۔ سروچ نیتا نے ایران تاجکستان کے بیچ ایتہاسک، دھارمک، سانسکرتک و بھاشائی استر پر گہری سمانتاؤں کا الیکھ کرتے ہوئے دونوں دیشوں کو آپس میں رشتے دار و بھائی بتایا۔ انہوں نے تاجکستان کے راشٹرپتی دوارا فارسی زبان کے پرچار و پرسار اور ایران کے راشٹرپتی سید ابراہیم رئیسی کے پہلے ودیشی دورے کے طور پر تاجکستان کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے بل دیا کہ یہ دورہ بتاتا ہے کہ ایران تاجکستان کے ساتھ سمبندوں کو کتنا مہتو دیتا ہے، اور پچھلے ایک سال کے دوران سمبندوں کا استر بڑا ہے لیکن ابھی اس حد سے بہت دور ہے جس حد تک پہنچا جانا چاہیے۔ ایران کے ودیش منترالے کے پروکتا نے کہا ہے کہ تہران کو اس بات کی جانکاری ہے کہ شہید خدائی کی ہتیا میں کس کا ہاتھ ہے، اور ہتھیاروں کو جلد ہی خفیہ چینل سے ایک دردناک سندیش ملنے والا ہے۔ غورطلب ہے کہ آئی آر جی سی کی قدس بریگیڈ کے سینئر ادھیکاری کرنل حسن سیاد खुदाई की 22 मई को तेहरान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या में इसराइल की भूमिका मानी जा रही है। हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसराइल की एक सुरक्षा एजेंसी के अधिकारी के हवाले से बताया था कि इसराइल ने अमरीका से संपर्क करके कर्नल खुदाई की हत्या की रिपोर्ट दी है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए यह टिप्पणी की। इसी प्रकार उन्होंने ईरान में संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्टर एलिना दोहान की रिपोर्ट के संदर्भ में कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट तेहरान में तैयार की है। खतीबजादे का कहना था कि दोहान ने पूरी आजादी के साथ अपना काम अंजाम दिया है और इस सिलसिले में कई गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न शख्सियतों से संपर्क किया है और ईरानी सरकार ने उनके काम में किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया। तेहरान का कहना है कि देश में संवर्धित यूरेनियम के भंडारण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की ताजा रिपोर्ट सही नहीं है और इसका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सईद खतीबजादे ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के पास मौजूद संवर्धित यूरेनियम में 2015 में हुए परमाणु समझौते की सीमा से 18 गुना ज्यादा हो चुकी है। हालांकि इस दावे का सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है। गौरतलब है कि IAEA ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित ताजा रिपोर्ट सोमवार को जारी की थी, जिसमें अनुमान लगाया गया है कि 15 मई 2022 तक ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम की मात्रा 3809 किलोग्राम हो गई है। परमाणु समझौते के मुताबिक ईरान सिर्फ 3000 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम का ही भंडारण कर सकता है, जिसे सीमित स्तर पर संवर्धित किया गया हो। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने 3 अघोषित स्थानों पर यूरेनियम के कण पाए जाने पर सवाल उठाए हैं। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए खतीबजादे ने कहा कि मार्च में तेहरान और IAEA के बीच एक समझौते पर पहुंचने के बाद एजेंसी के साथ कई बैठकों के दौरान ईरान ने तकनीकी सुविधाएं और दस्तावेज उपलब्ध करवाए और IAEA द्वारा उठाए गए सवालों के लिखित जवाब दिए थे। जर्मन विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके ईरान द्वारा फारस खाड़ी में यूनान के 2 जहाजों को रोके जाने की आलोचना की है। जर्मन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यूनान द्वारा ईरानी जहाज को जब्त किए जाने और ईरान की जल सीमा में यूनानी जहाजों के घुसने का उल्लेख किए बिना तेहरान की कार्रवाई की आलोचना करते हुए यूनानी जहाजों को आजाद करने की मांग की है। गौरतलब है कि IRGC के जनसंपर्क कार्यालय के मुताबिक पिछले हफ्ते शुक्रवार को IRGC की नौसेना ने फारस खाड़ी में कानून का उल्लंघन करने वाले यूनान के 2 जहाजों को रोक लिया था। मंगलवार की सुबह भारत प्रशासित जम्मू कश्मीर के कुलगाम हाई स्कूल में एक महिला शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक अज्ञात बंदूकधारियों ने शिक्षिका को नजदीक से गोली मारी है, जिन्हें अस्पताल में मुर्दा घोषित कर दिया गया। मरने वाली टीचर की पहचान रजनी बाला के रूप में हुई है। वो कुलगाम जिले में साल 2010 से काम कर रही थी। उनके पति राजकुमार कुलगाम में ही दूसरे स्कूल में काम करते हैं। महिला टीचर की हत्या पर प्रदेश के पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कश्मीर के ऐसे हालात कर दिए गए हैं कि अब यहां कोई सुरक्षित नहीं है। ये महिला 1990 में हुए पलायन के बाद PM एम्प्लॉयमेंट पैकेज के तहत फिर से कश्मीर में नौकरी के लिए वापस लौटी थी। संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा 2021 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने सोमवार को सिविल सेवा परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित किए, जिसमें श्रुति शर्मा पहले स्थान पर रही है। श्रुति शर्मा पहले, जबकि अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। इस तरह से UPSC की इस लिस्ट में मुख्य तीनों स्थानों पर लड़कियों ने बाजी मारी है। तीनों टॉप रैंकर के अलावा ऐश्वर्या वर्मा ने चौथा स्थान हासिल किया है, जबकि उत्कृष्ट द्विवेदी 5वें स्थान पर रहे हैं। इस प्रतिष्ठित परीक्षा में 685 उम्मीदवार कामयाब रहे हैं। UPSC ने सफल होने वाले उम्मीदवारों के बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी है। ज़ायोनी शासन की संसद में विपक्षी दलों के गठबंधन के नेताओं ने बेनेट कैबिनेट के फैसलों और योजनाओं का विरोध करने का ऐलान किया है। मंगलवार को प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के समर्थक गठबंधन के नेताओं इसराइली संसद नेसेट में प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की सरकार के फैसलों और योजनाओं का विरोध करने का ऐलान किया है। पिछले हफ्ते बेनेट कैबिनेट ने सर्विस से हटाए गए सैनिकों को वित्तीय सहायता देने वाले कानून के विरोध का प्रयास किया था, लेकिन इसराइली रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स की सहमति से विपक्ष ने इस कानून को पारित करा लिया। विपक्षी गठबंधन के नेताओं का कहना है कि अब वे ज़ायोनी सरकार के सभी फैसलों का विरोध करेंगे। इसी के साथ रेडियो तेहरान से विश्व समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
तो राजनीतिक चर्चा के दैनिक कार्यक्रम में मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए। ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भेंट में ईरान तथा ताजिकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई स्तर पर गहरी समानताओं का उल्लेख किया। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान और उनके साथ तेहरान की यात्रा पर आए शिष्टमंडल से भेंट के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों, विशेषकर अफगानिस्तान के वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की। बैतुल मुकद्दस शहर में आजकल जिस तरह की झड़पें देखने को मिल रही हैं, वैसी झड़पें वर्ष 1967 के बाद से देखने को नहीं मिली थीं। बैतुल मुकद्दस के पुराने इलाके में चरमपंथी ज़ायोनियों के विवादित फ्लैग मार्च को सुरक्षित बनाने के लिए 3,000 से अधिक सुरक्षाकर्मी, आतंकी सैनिकों और खूंखार कुत्तों को तैनात किया गया था। भारत के लगभग 25 विश्वविद्यालयों के सैकड़ों छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और भारत की नई शिक्षा नीति का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। छात्रों और शिक्षकों के अलावा कई वामपंथी नेताओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया।
सरकार इस तरीके की नीतियों से लगातार शिक्षा पर हमला कर रही है।
ईरान के इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भेंट में ईरान तथा ताजिकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई स्तर पर गहरी समानताओं का उल्लेख किया। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान और उनके साथ तेहरान की यात्रा पर आए शिष्टमंडल से भेंट के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों, विशेषकर अफगानिस्तान के वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की। समीक्षा पेश करें साथी कायम रिज़वी।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ भेंट में ईरान तथा ताजिकिस्तान के बीच ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई स्तर पर गहरी समानताओं का उल्लेख किया। आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनेई ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमाम अली रहमान और उनके साथ आए शिष्टमंडल से भेंट के दौरान क्षेत्रीय मुद्दों, विशेषकर अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान को लेकर ईरान और ताजिकिस्तान की चिंताएं समान हैं। दोनों ही देश वहां पर बढ़ते आतंकवाद और अतिवाद को लेकर बहुत चिंतित हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि हमारा मानना है कि वर्तमान समय में जो लोग अफगानिस्तान में सत्ता में हैं, उनको वहां पर सबकी सम्मिलिति से व्यापक सरकार का गठन करना चाहिए। इस भेंट वार्ता में ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान के संदर्भ में कहा है कि हम इस देश में शांति एवं सुरक्षा के साथ ही वहां पर एक ऐसी सरकार के गठन के इच्छुक हैं जिसमें अफगानिस्तान के सभी वर्गों की सहकारिता हो। वर्तमान समय में केंद्रीय एशिया को बढ़ती आतंकी कार्रवाइयों का सामना है। ईरान और ताजिकिस्तान दोनों देशों को संयुक्त रूप से आतंकवाद, अतिवाद और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी समस्याओं का सामना है। ये दोनों देश पहले ही अफगानिस्तान में आतंकी गुट दाइश के विस्तार पर अपनी चिंताएं सार्वजनिक रूप में जाहिर कर चुके हैं। तालिबान का ये दावा है कि वे अफगानिस्तान में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। तालिबान ने यह भी दावा किया है कि दाइश अफगानिस्तान के लिए कोई गंभीर खतरा नहीं है। हालांकि अप्रैल के महीने के अंतिम दो सप्ताहों में अफगानिस्तान में इतनी अधिक हिंसक कार्रवाइयां हुई हैं जिनमें लगभग 700 लोग हताहत और घायल हुए थे। इन हिंसक कार्रवाइयों में से अधिकांश की जिम्मेदारी दाइश ने ही स्वीकार की थी। अफगानिस्तान के उत्तर में ताजिकिस्तान से मिलने वाली सीमा वाला क्षेत्र ऐसा इलाका है जहां पर अशांति के कारण क्षेत्र में अस्थिरता फैल सकती है। ताजिकिस्तान के अधिकारियों ने बताया है कि अफगानिस्तान के तखार प्रांत के ख्वाजा गार नगर से ताजिकिस्तान की ओर 4 देसी मिसाइल फायर किए गए। इस काम की जिम्मेदारी दाइश ने बाद में स्वीकार की। आतंकवाद के अतिरिक्त मध्य एशिया को मादक पदार्थों की तस्करी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान में मादक पदार्थों की बढ़ती पैदावार और यूरोप तथा अमेरिका के लिए उनकी तस्करी ईरान और ताजिकिस्तान के लिए गंभीर चुनौती है, क्योंकि दोनों देशों की अफगानिस्तान से लंबी सीमाएं मिलती हैं। इस्लामी गणतंत्र ईरान के हिसाब से वर्तमान परिस्थितियों में आतंकवाद से मुकाबले के लिए ईरान और ताजिकिस्तान के बीच सहकारिता बहुत जरूरी हो चुकी है। इस संदर्भ में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामेनेई का ये मानना है कि ईरान तथा ताजिकिस्तान के मध्य सहयोग की जरूरत है, क्योंकि ये संयुक्त चिंता का मुद्दा है।
بیت المقدس شہر میں آج کل جس طرح کی جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ویسی جھڑپیں ورش 1967 کے بعد سے دیکھنے کو نہیں ملی تھیں۔ بیت المقدس کے پرانے علاقے میں چرم پنتھی زیونیوں کے وادت فلیگ مارچ کو سرکشت بنانے کے لیے 3000 سے ادھک سرکشا کرمی آتنکی سینکوں اور کھوکھار کتوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ سمیکشا پیش کریں ساتھی رویش زیدی۔
بیت المقدس شہر میں آج کل جس طرح کی جھڑپیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ویسی جھڑپیں ورش 1967 کے بعد سے دیکھنے کو نہیں ملی تھی۔ بیت المقدس کے پرانے علاقے میں چرم پنتھی زیونیوں کے ویوادت فلیگ مارچ کو سرکشت بنانے کے لیے 3000 سے ادھک سرکشا کرمی آتنکی سینکوں اور خونخوار کتوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ اگر اتنی بھاری سنکھیا میں سرکشا کرمی نہ ہوتے تو چرمپنتی زیونی کبھی بھی بیت المقدس پر حملہ کرنے کا ساہس نہیں کر پاتے۔ اتنی بھاری تعداد میں سرکشا بلوں کی تعیناتی یہ درشاتی ہے کہ چرمپنتی زیونیوں کے دلوں میں فلسطینی پرتیرودک بلوں کو لے کر کتنا ڈر بیٹھا ہوا ہے۔ آتنکی زیونی سینکوں نے پورے راستوں کو کٹیلے تاروں سے بلاک کر رکھا تھا اور ساتھ ہی راستے میں آنے والے ہر فلسطینی ناگرکوں کے ساتھ مار پیٹ کر رہے تھے، لیکن ان سب کے باوجود فلسطینی جیالوں نے ویوادت چرمپنتی زیونیوں کے فلیگ مارچ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ایک فلسطینی ناگرک کا کہنا ہے کہ یہ بھڑکاؤ فلیگ مارچ اویدھ زیونی شاسن کے پورے سمرتھن اور سرکشا کے ساتھ نکالا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم فلسطینی اس ویوادت فلیگ مارچ اور بیت المقدس شہر میں ہونے والے نسل وادی کرتیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ ایک انی فلسطینی ناگرک کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی پہچان اسلامی اور فلسطینی ہے، وہ چاہے کچھ بھی کر لیں لیکن انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ کبھی بھی اس شہر کی ایتہاسک پہچان کو نہیں بدل پائیں گے۔ اس بیچ ویسٹ بینک کے لگ بھگ سبھی کھیتروں میں چرمپنتی زیونیوں کے فلیگ مارچ کے خلاف ورودھ پردرشن کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ نابلس، ہوارا، بیت لحم اور ویسٹ بینک کے کئی گاؤں کے آس پاس کے علاقوں میں بھیشن جھڑپیں ہو رہی ہیں۔ ویسٹ بینک کے اتر پشچم علاقے جنین میں فلسطینی جیالوں نے آتنکی اسرائیلی سینا کے ٹھکانوں پر حملہ بولا ہے۔ وہیں نابلس میں بھی فلسطینی جیالوں نے زیونی قبضے والے علاقوں میں موجود کئی چوکیوں پر گولی باری کی ہے۔ جھڑپوں کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، دسیوں فلسطینی ان جھڑپوں میں گھائل ہو چکے ہیں۔
भारत के लगभग 25 विश्वविद्यालयों के सैकड़ों छात्रों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया और भारत की नई शिक्षा नीति का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। छात्रों और शिक्षकों के अलावा कई वामपंथी नेताओं ने भी इस विरोध प्रदर्शन को संबोधित किया।
भारत के लगभग 25 विश्वविद्यालयों के सैकड़ों छात्रों ने, जिनका अधिकतर संबंध अखिल भारतीय छात्र संघ से है, दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करके भारत की नई शिक्षा नीति का विरोध किया और इसे वापस लेने की मांग की। छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन को, जिसे छात्र संसद का नाम दिया गया था, कई शिक्षकों और वामपंथी नेताओं ने भी संबोधित किया।
हम ये साफ तरीके से जान रहे हैं कि सरकार इस तरीके की नीतियों से लगातार शिक्षा पर हमला कर रही है और इसके नीचे बिना कोई जमीन तैयार किए हुए सरकार CUET और तमाम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू करने पर उतारू है। तो इन चार पंक्तियों के साथ, क्योंकि अन्य वक्ताओं को आप लोग सुनेंगे, बहुत अनुभवी वक्ता हमारे बीच में है, दुष्यंत कुमार ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं और कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और हम और आप सब लोग जो इस स्टूडेंट पार्लियामेंट में शामिल होने के लिए यहाँ आए हैं और जो प्रतिरोध अपना दर्ज कर रहे हैं, उनके लिए दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि तुम्हें फिर भी यकीन नहीं। और मैं बेपनाह अंधेरों को सवेरा कैसे कहूँ, मैं इन अंधेरे नजारों का तमाश भी नहीं। आप सब ने मेरी बात को इतनी देर तक सुना।
दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आलोचना की और कहा कि सरकार ने शिक्षा नीति नहीं बल्कि इसकी आड़ में एक ऐसी राजनीति तैयार की है जिससे धर्मों के बीच नफरत और टकराव पैदा होगा और देश की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी। अखिल भारतीय छात्र संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन साई बालाजी ने कहा कि यदि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई तो इससे देश के बहुत से छात्र प्रभावित होंगे और ये नीति उनके हित में नहीं है। ज्ञात रहे कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को संसद के दोनों सदनों में पारित किया जा चुका है, परंतु अभी इसे लागू नहीं किया गया है और इसे लागू करने की तैयारी की जा रही है। छात्रों का कहना है कि इस नीति पर चर्चा होनी चाहिए थी जो नहीं की गई। केंद्र सरकार यद्यपि इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देश के बदलते हुए हालात के परिप्रेक्ष्य में आवश्यक बता रही है, लेकिन शिक्षकों और छात्रों का एक बड़ा वर्ग सरकार पर शिक्षा के निजीकरण, व्यवसायीकरण और सांप्रदायिकरण का आरोप लगा रहा है और देश का इतिहास और पाठ्यक्रम बदलने का विरोध कर रहा है। जमशाद काजमी, रेडियो तेहरान, दिल्ली।
ये तेहरान है, इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज। श्रोताओ, हमारी सभा का अंतिम कार्यक्रम होगा फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान, पर उससे पहले आप सुनिए दूसरा साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से।
قرآن قصے۔ प्रिय श्रोतागण, साप्ताहिक कार्यक्रम कुरानी किस्से की एक अन्य कड़ी के साथ आपकी सेवा में हाजिर हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको ये बताएंगे कि पवित्र कुरान के सूरे इसरा की आयत नंबर 81 कब नाजिल हुई थी। स्वाति और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार करें।
श्रोताओ, पैगम्बर इस्लाम ने ईश्वरीय धर्म इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए जो प्रयास किया था और इसी प्रकार उन्होंने जो सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्रवाइयाँ अंजाम दी थी, कई वर्षों के बाद पवित्र नगर मक्का पर विजय कर लेने के साथ उनका परिणाम निकला। पैगम्बर इस्लाम अपने साथियों व अनुयायियों के साथ पवित्र नगर मक्का के निकट जी तवी नमक स्थान पर पहुंचे। ये वो स्थान था जहां से मक्का नगर पूरी तरह दिखाई देता था।
پیغمبر اسلام نے اپنے ساتھیوں و انوائیوں کو چار دلوں میں وبھاجت کر دیا اور ہر دل کو ایک نیت دشا سے پوتر نگر مکہ میں داخل ہونے کا آدیش دیا اور انہیں کسی سے یدھ و مار پیٹ نہ کرنے کا آدیش دیا، کنتو یہ کہ دشمن ان پر حملہ کر دیں۔ چاروں دل چار دشاؤں سے پوتر نگر مکہ میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے کچھ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے جبکہ ادھکانش خانہ کعبہ میں چلے گئے۔ اس بیچ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جیسے کچھ کافروں و انیک شعبادیوں نے مسلمانوں کا ورودھ کیا اور ان پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں نے انہیں پیچھے ڈھکیل دیا۔ مسلمانوں کے جس دل سے کافروں نے یدھ کیا تھا اس دل کا نیتوت خالد بن ولید کر رہا تھا۔ جب کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا تو خالد بن ولید نے یدھ کا آدیش دیا اور مسلمانوں نے کافروں و انیکشور وادیوں کو کعبے کے نکٹ تک پیچھے ڈھکیل دیا اور اس لڑائی میں 20 کافر مارے گئے اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ سہیت دوسرے کافر بھاگ گئے۔
پیغمبر اسلام نے دور سے دیکھا کہ وہاں پر لڑائی ہو گئی ہے تو انہوں نے یدھ بند کرنے کا آدیش دیا اور سنیوگ سے یہ وہ سمے تھا جب یدھ ختم ہو گیا تھا اور 20 کافروں کے مارے جانے کے بعد کچھ بھاگ گئے اور شیش نے آتم سمرپن کر دیا۔ دھیرے دھیرے سارے مسلمان پوتر نگر مکہ میں داخل ہو گئے۔ جب مسلمان مکہ نگر میں داخل ہو گئے تو مدینہ کے ایک جانے مانے مسلمان سعد بن عبادہ نے چلا کر کہا کہ آج پرتیشوت لینے کا دن ہے۔ کافروں اور مکہ کے رہنے والے انیک شروادیوں نے مسلمانوں کو بہت پرتاڑت کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے بہت برا برتاؤ کیا تھا۔ اس پرکار سے کہ کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ جو اپرادھ انجام دیے تھے وہ ان کے ذہنوں میں گھوم رہا تھا اور سبھی کافر اور انیک شروادی یہ سوچ رہے تھے کہ اب مسلمان ان سے بدلہ لیں گے اور انہیں اس کے کیے کی سزا دیں گے اور مزہ چکھائیں گے۔ پرنتو جب پیغمبر اسلام کے کانوں میں سعد بن عبادہ کی بات پڑی تو انہوں نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ اور اس کے ہاتھ سے پرچم و دھوج لے لو اور اس کے بعد فرمایا آج دیا اور شمع کا دن ہے۔
اسلام پوتر نگر مکہ میں داخل ہو جانے کے بعد اپنے انوائیوں و ساتھیوں کے ساتھ کعبے کی اور گئے۔ پیغمبر اسلام کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا، ایشور ایک ہے، اس کا کوئی سمتلیہ نہیں ہے، اس کا وعدہ سچا ہوا اور اس نے اپنے بندے کی سہایتا کی اور کافروں و انیکشور وادیوں کے وبھن گٹوں و دلوں کو اکیلے پراجت کر گیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے قریش قبیلے کے ایک انیکشوادی سہیل بن عمر کو سمبودھت کر کے کہا، تم کیا کہتے ہو؟ اس پر اس نے کہا، ہم اچھائی اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں کہتے، آپ بڑے بھائی اور ہمارے بڑے چاچا کے بیٹے ہیں۔ اس پر پیغمبر اسلام نے کہا، میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو ہمارے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تمہاری بھرتسنا و نندہ کا وقت نہیں ہے، مہان ایشور تمہیں چھما کر دے گا، وہ بہت دیالو اور انتیانت چھما کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کہا، ہے لوگو، مہان ایشور نے اسلام کے مادھیم سے اگیانتا کے کال کے گرو کو سماپت کر دیا ہے، یعنی جو لوگ اپنے پوروجوں اور قبیلوں پر گرو کرتے تھے اسے اسلام نے سماپت کر دیا ہے۔ سب آدم کی سنتان ہیں اور وہ مٹی سے پیدا ہوئے تھے۔ ایشور کا بہترین بندہ وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، یعنی ایشور سے ڈرے۔ لوگوں کا دو گروہ ہے، ایک ایشور سے ڈرنے والا اور ایشور کے نکٹ اسی کا مہتو ہے، اور دوسرا برا کار کرنے والا گروہ اور ایشور کے نکٹ اس کا مول نہیں ہے۔ عرب ہونا گرو کا کارن نہیں ہے، عربی کیول ایک بھاشا ہے جس میں تم بات کرتے ہو۔ جس نے بھی گیان حاصل کرنے اور نیک عمل انجام دینے میں کمی سے کام لیا اسے اس کے پوروج اور جات سے کوئی لابھ نہیں پہنچے گا۔ لوگ آدم کے زمانے سے لے کر آج تک کنگھی کے دانے کی بھانتی برابر ہیں۔ عرب کو غیر عرب پر اور گورے کو کالے پر کوئی سرشتہ نہیں ہے، اور سرشتہ کا ماپ دنڈ کیول تقوی و ایشوری بھائی ہے۔ دوسرے شبدوں میں صدگن اور اچھائیاں بہتری کا ماپ دنڈ ہیں۔ میں سمست ان چیزوں کو سماپت کر رہا ہوں جن پر لوگ اجانتا کے کال میں گرو کرتے تھے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اور مسلمانوں پر ایک دوسرے کا خون حرام ہے، اور ودیشیوں و اپرشتوں کے مقابلے میں سب ایک ہاتھ کی بھانتی ایک جٹ ہیں۔
جو مسلمان مکہ سے مدینہ پلائن کر کے گئے تھے وہ بہت ہی پرسن و خوشحال تھے، اور خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، وہ خوشی سے رو رہے تھے، وہ مہان ایشور کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ان سب کے باوجود مسلمانوں کو ایک چیز سے تکلیف پہنچ رہی تھی، اور وہ سب اس بات سے دکھی تھے کہ ابھی بھی کعبے کے اندر 360 مورتیاں موجود تھیں۔ لوگ پیغمبر اسلام کو دیکھ رہے تھے، انیکیشورواد کی انتیم نشانی کو ختم کرنے کے لیے شرن گن رہے تھے۔ ابھی بھی پوتر نگر مکہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو مورتیوں سے پریم کرتے تھے اور مورتیوں کی سرکشا کے لیے دعا کر رہے تھے۔ کافروں اور انیکیشوروادیوں نے مورتیوں کی رکشا کے لیے بھاری قیمت چکائی تھی، انہیں وشواس نہیں آ رہا تھا کہ وہ توڑ دی جائیں گی۔ مسلمان کی پرتیکشا کی گھڑی سماپت ہو گئی، اور پیغمبر اسلام کے آدیش سے کعبہ مورتیوں کے استتو سے پوتر ہونے لگا۔
شوتاو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ پوتر نگر مکہ میں داخل ہوا، اس دن کعبے کے اندر اور اس کے اگل بگل 360 بت موجود تھے۔ پیغمبر اسلام کے آدیش سے مسلمانوں نے سمست بتوں کو توڑ دیا۔ کافروں و انیکیشور وادیوں نے کعبے کے اندر حبل نام کے بت کو سب سے اوپر رکھا تھا۔ جب پیغمبر اسلام کی نظر اس پر پڑی تو حضرت علی علیہ السلام کو دیکھا اور فرمایا، ہے علی، تم میرے کندھے پر چڑھ کر اوپر جاؤ اور حبل کو گرا دو، یا میں تمہارے کندھوں پر چڑھ کر اوپر جاتا ہوں اور کعبے کی چھت سے اس بت کو گرا دیتا ہوں۔ اس پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ہے ایشوری دود، آپ میرے کندھوں کے اوپر سے بت کو گرا دیجیے۔ پرنتو چونکہ حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے بھار کو سہن نہ کر سکے، اس لیے حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے کاندھوں پر چڑھ کر حبل نام کے سب سے بڑے بت کو کعبے کی چھت سے نیچے گرا دیا۔ خود حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب پیغمبر اسلام میرے کاندھوں پر چڑھے تو میں ان کی پیغمبری کی مہانتا اور ویبھو کے کارن ان کے بھار کو سہن نہ کر سکا۔ پیغمبر اسلام اس بات کو سمجھ گئے اور مسکراہٹ کے ساتھ وہ نیچے اتر آئے اور مجھے اپنے کاندھوں پر سوار کیا۔ جب پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے تو اس ایشور کی سوگند جس نے دانے کو چیرا ہے اور سمست چیزوں کی رچنا کی اور پیدا کیا ہے، میں اس پرکار اونچا ہوا کہ اگر چاہتا تو آسمان تک پہنچ جاتا۔ میں نے حبل بت کو پکڑا اور اسے نیچے گرا دیا۔ اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام پیغمبر اسلام کے کاندھوں سے نیچے اتر آئے۔ جب وہ پیغمبر اسلام کے کاندھوں سے نیچے اتر رہے تھے تو مسکرا رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے حضرت علی علیہ السلام سے مسکرانے کا کارن پوچھا تو آپ نے جواب میں فرمایا، آپ کے کاندھوں سے زمین پر آیا پرنتو کسی چیز کا آبھاس نہیں کیا۔ اس پر پیغمبر اسلام نے فرمایا، کیسے کسی چیز کا آبھاس کرتے جبکہ محمد نے تمہیں اپنے کاندھوں پر اٹھا رکھا تھا اور جبرائیل نے تمہیں نیچے اتارا۔ یہ وہ وقت تھا جب پوتر قرآن کے سورہ اسراء کی آیت نمبر 81 نازل ہوئی۔ اس آیت میں مہان و سرو سمرتھ ایشور کہتا ہے، ہے پیغمبر، کہہ دیجئے کہ حق آیا اور باطل ختم ہو گیا، بے شک باطل ختم ہونے والا تھا۔
पवित्र कुरान की इस आयत का स्पष्ट संदेश है कि सत्य व हक बाकी रहेगा और असत्य व नाहक मिट जाएगा। यद्यपि सत्य के समर्थक कम ही क्यों न हो और असत्य के समर्थकों की संख्या अधिक ही क्यों न हो, सत्य व हक पानी की तरह बाकी रहता है, परंतु असत्य व नाहक पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो जाता है। ये महान व सर्वसमर्थ ईश्वर की परंपरा है। महान ईश्वर पर आस्था रखने वाले इंसान को कठिनाइयों में घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयां हवा के तेज झोंके की तरह आती और चली जाती है। कठिनाइयों का मुकाबला करके इंसान मजबूत बनता है। पैगंबर इस्लाम ने जब कावे में प्रवेश किया तो उन्होंने हजरत अली अलैहि सलाम से कहा कि वह उस्मान बिन तलहा से कावे की कुंजी मांग लें, क्योंकि उस समय उस्मान बिन तलहा ही काबे की कुंजी का मालिक था। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया था कि कुंजी ले लें ताकि काबे के अंदर को बूतों से साफ किया जाए। काबे की कुंजी मिल जाने के बाद पैगंबर इस्लाम के चाचा अब्बास ने पैगंबर इस्लाम से कहा कि काबे की कुंजी उन्हें दे दें, परंतु पैगंबर इस्लाम ने उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया और खाने काबा को बूतों व मूर्तियों से पवित्र करने के बाद उसकी चाबी हजरत अली अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी ताकि उसे वह उस्मान बिन तलहा के हवाले कर दे। उस वक्त पैगंबर इस्लाम ने पवित्र कुरान के सूरह निसा की 58वीं आयत की तिलावत की, जिसमें महान ईश्वर अमानत वापस करने की बात कर वह आदेश दे रहा है। इस्लामी रिवायतों के अनुसार हजरत अली अलैहिस्सलाम ने काबे की कुंजी को उस्मान बिन तलहा को लौटा दी। वह हजरत अली अलैहिस्सलाम से कहता है कि मैं नहीं सोचता था कि इतने प्रेम के साथ आप काबे की कुंजी मुझे लौटाएंगे। इस पर हजरत अली अलैहिस्सलाम ने पवित्र कुरान की उस आयत की तिलावत की जिसमें अमानत को वापस किए जाने की बात कही गई है और कहा कि महान ईश्वर के आदेश के सम्मान में मैंने ऐसा किया। उस्मान बिन तलहा ने जैसे ही यह बात सुनी उसी वक्त इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया।
तो श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें, खुदा हाफिज।
ये रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा है। रेडियो तेहरान सच्चाई और उन सब की आवाज जिनकी आवाज कोई नहीं सुनाता। ताजा समाचारों और सटीक समीक्षाओं के लिए हमसे जुड़िए और हमेशा जुड़े रहिए। और अब रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा का अगला कार्यक्रम।
फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान।
दोस्तों, कार्यक्रम फिलिस्तीनी मुद्दा और समाधान की कन्नकड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मरियम मेहरदादी और मोहम्मद मेहदी का सलाम स्वीकार कीजिए।
दोस्तों, अमेरिका और अवैध ज़ायनी शासन के विस्तारवादी योजनाओं के दृष्टिगत पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि अगर फिलिस्तीन संकट के समाधान के उद्देश्य से इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता का प्रस्ताव व सुझाव लागू कर दिया जाए तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है।
फिलिस्तीनियों की आकांक्षाओं के पूरा होने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा व रुकावट कुछ अरब शासकों द्वारा अमेरिका और अवैध ज़ायोनी शासन के विस्तारवादी योजना का समर्थन और उनके साथ सांठगांठ करना है।
इसराइल के साथ सांठगांठ करने वाले अरब शासक अच्छी तरह से जानते हैं कि फिलिस्तीन में राष्ट्रीय जनमत संग्रह के व्यवहारिक होने की स्थिति में इसराइल का विनाश निश्चित है, जिससे फिलिस्तीनी विजयी होंगे और प्रतिरोध का मोर्चा अधिक मजबूत हो जाएगा। सांठगांठ करने वाले इन अरब शासकों के साथ उनके देश की जनता नहीं है, इनका किसी भी प्रकार का कोई जनाधार नहीं है, ये वास्तव में कठपुतली सरकारें हैं।
यही कारण है कि वे क्षेत्र में अमेरिका के हितों की पूर्ति करते हैं और फिलिस्तीनी हितों को अनदेखा करते रहते हैं। अमेरिकी हितों के हिसाब से पश्चिम एशिया में इसराइल का अस्तित्व बाकी रहे। अवैध ज़ायोनी शासन के साथ सांठगांठ करने वालों ने हालिया वर्षों के दौरान फिलिस्तीनियों के अधिकारों के बारे में बोलना ही छोड़ दिया है। फिलिस्तीनियों के हितों पर ध्यान दिए बिना ही वे सांठगांठ की प्रक्रिया को जारी रखे हुए हैं।
अवैध ज़ायोनी शासन के साथ संयुक्त अरब इमारात का अपने कूटनीतिक संबंधों को सामान्य करना ये बताता है कि उसने अब फिलिस्तीनियों के अधिकारों से आंखें मूंद ली है, परंतु 33 दिवसीय और 22 दिवसीय युद्धों में दुश्मन की पराजय और इस्लामी जागरूकता को विफल बनाने वाले षड्यंत्र के नाकाम हो जाने के बाद सांठगांठकर्ता इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि इन हालात में क्षेत्र में प्रतिरोधकर्ताओं को मजबूती मिलेगी। इस बात को देखते हुए उन्होंने अवैध ज़ायोनी शासन के साथ संबंध सामान्य बनाने के प्रयास तेज कर दिए, जो पहले ढके छिपे थे और सार्वजनिक रूप से उन पर बात नहीं की जाती थी।
सांठगांठ करने वाले अरब शासकों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अमेरिका द्वारा क्षेत्र को छोड़कर चले जाने से या फिर उसके उपस्थिति के कम होने की स्थिति में क्षेत्र में अवैध ज़ायोनी शासन सर्वेसर्वा हो जाएगा। यही कारण है कि अमेरिकी घटक अरब शासकों को इस बात की जल्दी है कि इन हालात में उनको भी कुछ मिल जाए, इसलिए वे बिना कुछ सोचे समझे अदूरदर्शिता में अवैध ज़ायोनी शासन के साथ जल्दी में अपने संबंध सामान्य कर रहे हैं। ज़ायोनी शासन से संबंधों को सामान्य बनाने हेतु संयुक्त अरब इमारात के अब्राहम समझौते को इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। इस समझौते ने यह दर्शा दिया कि संयुक्त अरब इमारात को फिलिस्तीन की मजलूम जनता और उसके अधिकारों से कोई सहानुभूति नहीं है।
दूसरे शब्दों में जो देश ज़ायोनी शासन से संबंधों को जल्द से जल्द सामान्य बनाने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं, वास्तव में उन्हें फिलिस्तीनी जनता और उसके अधिकारों से कोई दर्द नहीं है, और अगर उन्हें इसकी पीड़ा होती तो वे कभी भी ज़ायोनी शासन से संबंधों को सामान्य बनाने के लिए व्याकुल न होते। जो देश अतिग्रहणकारी ज़ायोनी शासन से संबंधों को सामान्य बनाने के लिए परेशान हैं, वास्तव में इन देशों की तानाशाही सरकारों को अपनी भी जनता की इच्छा का ख्याल नहीं है, और वे अच्छी तरह इस बात को जानती हैं कि जनता के मध्य उनका कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अगर इन देशों की तानाशाही सरकारों को इस बात का ज्ञान व विश्वास होता है कि जनता के मध्य उनका स्थान है, उन्हें जनाधार प्राप्त है, तो तानाशाही सरकारों को अंत करने के लिए लोकतांत्रिक सरकार के गठन के लिए चुनाव करवाती। दूसरे शब्दों में तानाशाही सरकारों का चुनाव न करवाना इस बात का सूचक है कि वे अपने अंजाम से भली भांति अवगत है और अपनी सरकार की बका के लिए अमेरिका और इसराइल के समर्थन को आवश्यक समझ रही हैं।
17 सितंबर वर्ष 1978 को अरब देशों और ज़ायोनी शासन के मध्य कैंप डेविड में सांठगांठ की बुनियाद रखी गई। इसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जिमी कार्टर, मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात और ज़ायोनी शासन के प्रधानमंत्री मनाहिम बेगिन ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वर्ष 2002 में लेबनान की राजधानी बैरूत में जो सम्मेलन हुआ था उसमें कहा गया था कि अरब देश ज़ायोनी शासन के साथ उस वक्त संबंधों को सामान्य बनाने के लिए तैयार हैं जब ज़ायोनी शासन वर्ष 1967 से पहले की सीमाओं पर लौट जाए, परंतु ज़ायोनी शासन ने 33 और 22 दिवसीय युद्ध में प्रतिरोध को मिलने वाली सफलता ने यह दर्शा दिया कि जो ये कहा जाता था कि इसराइल अजय है, अब वो धारणा खत्म हो चुकी है और बहुत से हलकों के लिए इसराइल की खोखली शक्ति स्पष्ट हो गई है और बहुत से लोगों का विचार बदल गया है और वे इस नतीजे पर पहुंच गए हैं कि प्रतिरोध के माध्यम से अति ग्रहणकारी ज़ायोनी शासन से अपने अधिकारों को वापस लिया जा सकता है।
क्षेत्रीय मामलों के जानकार बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरह अरब देशों की तानाशाही सरकारें इसराइल से संबंध सामान्य बनाने के बारे में सोच रही हैं और इस दिशा में उनके प्रयासों के परिणाम दिन प्रतिदिन सामने आते जा रहे हैं, अगर इन देशों और वहां की तानाशाही सरकारों ने फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए प्रयास किया होता तो बहुत पहले फिलिस्तीन समस्या का समाधान हो चुका होता। 70 साल से अधिक का समय हो रहा है जब से ज़ायोनी शासन ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ अत्याचार का बाजार गर्म कर रखा है, पर आज तक जो इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसका एक मुख्य कारण अरब देशों की तानाशाही सरकारों की ओर से फिलिस्तीन समस्या के प्रति उदासीनता रही है। और अमेरिका और ज़ायोनी शासन को अच्छी तरह पता है कि अरब देशों की तानाशाही सरकारों को लेश मात्र भी फिलिस्तीनियों और उनके अधिकारों की चिंता न थी और न है, और इसी कारण इसराइल फिलिस्तीनियों के खिलाफ किसी प्रकार के अपराध में संकोच से काम नहीं लेता है और अरब देशों की तानाशाही सरकारें मूक दर्शक बनी रहती हैं।
यही नहीं, अरब देशों की तानाशाही सरकारें मजलूम फिलिस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के अपराधों की भर्त्सना तक नहीं करती हैं, क्योंकि तानाशाही सरकारों को इस बात का भय लगा रहता है कि अगर उन्होंने इसराइल के अपराधों की भर्त्सना कर दी तो अमेरिका और इसराइल उनसे नाराज हो जाएंगे। इन देशों को ये मंजूर है कि उनकी जनता उनसे नाराज रहे, परंतु अमेरिका और इसराइल की नाराजगी उन्हें स्वीकार नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तानाशाही सरकारें अमेरिका और इसराइल की प्रसन्नता और समर्थन को अपनी बका का आधार समझती हैं।
ईरान में फिलिस्तीनी आंदोलन हमास के प्रतिनिधि खालिद गुदूमी का मानना है कि अरब शासकों के लिए सुरक्षा और अपनी सरकार की बका के अलावा उनके लिए कोई भी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए फिलिस्तीनियों का कोई महत्व नहीं है। इसराइल द्वारा फिलिस्तीनियों के दमन पर वे मौन धारण किए रहते हैं। फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए ईरान ने जो प्रस्ताव दिया है, अगर उस पर फिलिस्तीन में अमल किया जाता है तो यह अरब जगत में उदाहरण व आदर्श हो जाएगा।
अरब देशों की तानाशाही सरकारों को ये भय है कि अगर फिलिस्तीन में जनमत संग्रह हो गया तो दूसरे देशों में तानाशाही सरकारों के स्थान पर लोकतांत्रिक सरकार के गठन की मांग जोर पकड़ जाएगी और आज नहीं तो कल उनकी तानाशाही सरकार की विदाई निश्चित है। इसलिए वे फिलिस्तीन में ईरान के तार्किक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक प्रस्ताव को भी लागू करने से डरती हैं और वे कभी भी ये बात नहीं कहती हैं कि ईरान ने फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए जो प्रस्ताव और सुझाव दिया है बहुत ही तार्किक है। ये तानाशाही सरकारें ईरान के तर्क संगत प्रस्ताव का समर्थन भी नहीं करती हैं।
संबंध में जो ओस्लो समझौता हुआ है, दूसरे शब्दों में इसराइल के साथ जो सांडगांठ समझौता हुआ है, वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों में हर प्रकार के प्रतिरोध का विरोधी है। यही नहीं, सऊदी अरब की अगुवाई में अरब देश इसराइल के खिलाफ प्रतिरोध के विरोधी हैं और इसी कारण वे ईरानी प्रस्ताव के विरोधी हैं। अरब देश इस बात की चेष्टा में है कि प्रतिरोध को जारी रखने हेतु फिलिस्तीनियों की जो भावना है उनकी इस भावना को बदला व खत्म किया जाए, क्योंकि अरब देशों की तानाशाही सरकारें प्रतिरोध को अपने अस्तित्व के लिए भी खतरा समझ रही हैं, इसलिए वे प्रतिरोध का विरोध कर रही हैं।
बहुत से लोग फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए फिलिस्तीन नाम के एक स्वतंत्र देश के गठन को आवश्यक समझते हैं और उनका मानना है कि कुद्स को फिलिस्तीन की राजधानी होना चाहिए। इसराइल के अलावा अरब देशों की तानाशाही सरकारें भी इस प्रस्ताव की विरोधी हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र देश बन गया और वहां पर एक लोकतांत्रिक सरकार गठित हो गई तो उनकी तानाशाही सरकारों पर दबाव बन जाएगा और ये दबाव उनकी तानाशाही सरकार के अंत का कारण बन सकता है। इसी कारण वे फिलिस्तीन में एक स्वतंत्र व आजाद देश बनने का विरोध कर रही हैं।
बहरहाल जहां पश्चिमी व यूरोपीय सरकारें ज़हनी शासन का समर्थन कर रही हैं, वहीं क्षेत्र की अरब तानाशाही सरकारें भी इसराइल के अपराधों पर अर्थपूर्ण चुप्पी साधे हुए हैं और इन्हीं देशों की चुप्पी के कारण ज़हनी शासन पूरे दुस्साहस के साथ फिलिस्तीन की मजलूम जनता के खिलाफ मनमाने अपराध जारी रखे हुए है। दूसरे शब्दों में पश्चिमी व यूरोपीय देशों का समर्थन और क्षेत्र के अरब देशों की चुप्पी वो कारण है जिसकी वजह से ज़हनी शासन किसी प्रकार के संकोच के बिना फिलिस्तीनियों के खिलाफ अपने अपराधों को पूरे दुस्साहस के साथ जारी रखे हुए है और जब तक मानवाधिकार की रक्षा के दावेदारों का ये दोहरा व्यवहार जारी रहेगा तब तक फिलिस्तीन समस्या के समाधान की कामना अपेक्षा से परे है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है, अनुमति दीजिए।
तो दोस्तों, इसी के साथ ये सभा यहीं पर संपन्न होती है। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।